हम सभी बाबा के बच्चे मधुवन में गहन तपस्या करने के लिए आते हैं। अपने अपने स्थानों पर भी हम तपस्या करते हैं, परंतु मधुवन में हम भाग भाग करके गहन तपस्या करने के लिए आते हैं, क्योंकि गहन तपस्या ही हमारे श्रेष्ठ जीवन का आधार है और भविष्य का भी आधार है, हम सभी जानते हैं। और सभी समस्याओं का हल भी तपस्या से ही निकलता है। अगर इसमें थोड़ा हम ढिलाई बरतते हैं या अलबेलापन दिखाते हैं तो हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम सभी इससे परिचित हैं, अनुभवी हैं। कुछ समस्याएं हमारे पिछले कर्मों के अनुसार हमारे सामने आती हैं, अच्छी बातें भी आती हैं और समस्याएं भी आती हैं। तो जब बाबा का ज्ञान मिलता है तो हम उस ज्ञान के आधार पर उसको हल करना चाहते हैं और करते भी हैं। तो बाबा कहते हैं मूल उसमें आपकी जो तपस्या है, गहन तपस्या, कितनी गहन तपस्या, आप कितने गहरे पानी में बैठ करके इस ईश्वरीय ज्ञान का अध्ययन करते हैं और तपस्या करते हैं, बाप को याद करते हैं जिसको हम कहेंगे, वो मैटर करता है, वो इम्पॉर्टेंट है। हम कोई भी खेल खेलते हैं, हर खेल का एक नियम होता है, शुरू में बेसिक्स होते हैं जिसको कहते हैं, हम मूलभूत बातें होती हैं, शुरुआत जैसे कहते हैं, वो अगर बातों को हम फॉलो करते हैं तो हमारा खेल काफी, हम प्रोग्रेस करते हैं उस खेल में, सफल होते हैं। ठीक इसी तरह ही बाबा ने ये जो ज्ञान दिया है जिसको हम 7 सप्ताहिक कोर्स भी कहते हैं, हम शुरू शुरू में सब भाई बहने जैसे ही हम पैदा होते हैं बाबा का बनते हैं। हमारे समय में जब हम आए थे 67 की बात है, उस समय कोर्स नहीं होता था, परंतु 3-4 दिन इसी तरह ही दादियां या जो भी उस समय वरिष्ठ होते थे वो चित्रों पर हमें समझा देते थे, मेन चित्र जो थे, परंतु मूल रूप में बाद में वो साप्ताहिक कोर्स बना। साप्ताहिक कोर्स क्या है, आप सुनने में थोड़ा आपको ऐसा लगेगा, वो हमारा जो प्राथमिक या मूलभूत बातें हैं हमारी, या बेसिक्स हैं जिसको कहते हैं, वो साप्ताहिक कोर्स में है। और मेरा अनुभव ये कहता है कि अब जब बेसिक्स को छोड़ देते हैं, अभी जैसे हमारा यज्ञ बहुत विस्तार को पा चुका है, हमारी सेवाएं बहुत विस्तार को पा चुकी हैं, और मेरा अनुभव यही है, कहता है हम देखते हैं एक दूसरे अनुभव सुनते भी हैं सुनाते भी हैं, हम बेसिक्स को भूल चुके हैं। आप देखिए, मैं एक जैसे शुरू में हम जब साप्ताहिक कोर्स करते हैं तो पहले दिन जैसे शिव बाबा का परिचय मिलता है हमें, ठीक है, वो हमें याद भी रहता है, बाबा की महिमा है, बाबा कौन है, ज्योति बिंदु है, सर्वशक्तिवान है ना, कितनी महिमा है। और उसी तरह हम आत्मा भी सत चेतानंद स्वरूप है। इसके बाद तीनों लोकों का एक चित्र आता है, आप देखेंगे सबसे जितना भी ज्ञान है या सृष्टि चक्र है या कल्प वृक्ष है, वो पूरा तीनों लोकों में समाया हुआ है। हम कर्म क्षेत्र पर हैं, अपना डिस्टाइंड रोल जो है वो पार्ट प्ले कर रहे हैं, यहाँ सब आत्माएं अपना अपना जो डिस्टाइंड रोल है। और जब हमें ज्ञान मिलता है तो उसमें तीनों लोकों का ज्ञान मिलता है, ये कर्म क्षेत्र है या इसके बाद फिर हम ऊपर जाते हैं, तीन सूक्ष्म पुरियां आती हैं, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। कर्म क्षेत्र और उन तीनों पुरियों में क्या अंतर है, यहां हम संकल्प भी करते हैं, वाचा में भी आते हैं और कर्म भी करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों जो हमारे आत्मा की फैकल्टीज कह सकते हैं वो हमारा कर्म में हम आते हैं। हम पार्ट प्ले करते हैं, संकल्प भी करते हैं, आवाज भी करते हैं, कर्म भी करते हैं। और तीनों सूक्ष्म पुरियों में, सटल वर्ड जिसको बाबा कहते हैं, वहां मनसा संकल्प भी है, वाचा भी है, परंतु कर्म भी है, वाचा भी है, परंतु आवाज नहीं है। ये बेसिक्स है। और इसके बाद जब हम परम धाम में जाते हैं, बहुत वंडरफुल लगेगा आपको सुनकर के, कुछ दिन पहले हमने एक गुलजार दादी का क्लास, बहुत छोटे क्लिप थे, वीडियो था, बहुत अच्छा हमें लगा। परम धाम का परिचय क्या है हमारा? हम अमृत वेले उठ करके, अमृत वेला बहुत शौक से करते हैं, सभी बच्चे करते हैं, परंतु उस समय हम विचार सागर मंथन में भी रहते हैं। तो दादी ने स्पष्ट कहा कि अमृत वेले सिर्फ आपको कोई मनन चिंतन नहीं करना है, सिर्फ बाबा से शक्ति लेनी है बस। तो शक्ति किस अवस्था में हम ले सकते हैं? वो है बीज रूप स्थिति, आत्मा की स्थिति। सूक्ष्म पुरियों के सटल वर्ल्ड के ऊपर हम जब जाते हैं, वहां अपना शरीर तो जाता नहीं है ना, और वहां ना संकल्प है, ना कर्म है, ना वाचा है। स्वीट साइलेंस वर्ड जिसको बाबा कहते हैं। तो ये बेसिक्स है हमारे, और ये है, निश्चित है। हमारी निश्चय की परिभाषा क्या है? मैं कई बार सोचता हूं कि बाबा ने जो चीज बताई है एज इट इज, हमें अगर हम फॉलो करते हैं, उन बेसिक्स को फॉलो करते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें प्रॉब्लम क्यों आती है? हम उन बेसिक्स को भूल चुके हैं। हम जब योग में बैठते हैं, हमारा भी अनुभव है, आप सभी का भी अनुभव होगा, कि परम धाम में भी होते हुए भी हमारे संकल्प चलते रहते हैं, है ना। हम यहां की कहानियां अपने जैसे साथ लेके चलते हैं। हम उस समय भूल जाते हैं कि हम सूक्ष्म वतन में हैं या परम धाम में हैं। जब बाबा ने, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने, उससे बड़ी तो कोई अथॉरिटी नहीं, उन्होंने ये परिचय दिया है हमें कि बच्चे परम धाम में कोई संकल्प नहीं होता, कोई वाचा नहीं होती, कोई कर्म नहीं होता, क्योंकि शरीर साथ नहीं होता। परंतु सूक्ष्म पुरियों में ये तीनों चीजें होती हैं, परंतु आवाज नहीं होता। ये बेसिक्स है। तो क्या हम जब अमृत वेले उठते हैं, बैठते हैं बाबा की याद में, जैसे दादी ने कहा कि सुबह अमृत वेले उठ करके सिर्फ शक्ति लेनी, मनन चिंतन नहीं करना। मनन चिंतन करना बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, करना ही चाहिए। वो सिर्फ हमें सूक्ष्म पुरियों में करना, ये बेसिक्स है हमारे। तो मैंने देखा है कि अगर हम बाबा के कहने के अनुसार हम योग करते हैं, तरह तरह की याद का प्रयास करते हैं, स्टडी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, परंतु ये बात मैंने देखा है, मेरा अपना भी अनुभव है, कि हम परम धाम में बैठ करके भी संकल्प करते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि एज इट इज जो सच्चा सदगुरु है, उसकी जो आज्ञा है कि बच्चे वहां तो आवास नहीं है, संकल्प नहीं है, कर्म नहीं है बिल्कुल। तो आत्मा, अगर आप इस स्मृति में रह करके आवाहन करेंगे, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है संकल्प करने की भी, वाचा में आने की भी, कर्म करने की, वो तो है ही है, हम रह नहीं सकते। कुछ ना कुछ हमारी स्मृति में ये रहता ही है। इसमें स्मृति का बहुत पार्ट प्ले होता है। स्मृति में बहुत कुछ भरा रहता है। 72 में हम मधुबन में आए थे, गुलजार दादी जी का क्लास था, उसमें मेन तीन चीजें थी। हम बच्चों को तीन बातें याद रखनी है योग में। एक, मैं कौन हूं, आत्मा हूं, हम जानते हैं। बाप को याद रखना है, बाप कौन है, कैसा है, कौन है, कैसा है, इसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। और तीसरा, धाम को याद करना है, घर को याद करना है। पहले मुरलियों में हम आप भी सुनते होंगे, हम परम धाम को याद रखते हैं, बाबा को अपने को भी याद रखते हैं कर्म करते भी, परंतु परम धाम की याद भूल जाती है। ये मिसिंग है, मिसिंग क्रेडिट ही कहेंगे हम, हमारी लाइफ में इसका अभ्यास नहीं है हमें। तो मैंने देखा है कि जो बाबा की श्रीमत है 100% उसको 1% भी कम नहीं एक्यूरेटली अगर उसको फॉलो करते हैं तो ये बेसिक्स है तीनों लोकों में। बाकी चक्कर भी हम कर्म क्षेत्र पार आते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्कर हम लगाते हैं आम आत्मा, उसमें भी बेसिक से आती हैं बातें। हम सतयुग में जैसे सतो प्रधान आत्मा होते हैं, फिर सतो आते हैं रजो तमो, फिर हमें बनना है। और इसके साथ ही बाबा ज्ञान देते हैं त्रिमूर्ति का, मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना करता हूँ, विष्णु द्वारा पालना करता हूँ, शंकर द्वारा विनाश का, हम सब जानते हैं बहुत जैसे कंठस्थ है ये चीजें। परंतु हम क्या नए संस्कारों की स्थापना करते हैं? हम अपने पुराने संस्कारों को साथ लेकर के नए संस्कारों के साथ मिक्स होकर के स्थापना करते हैं, अपना संस्कार नहीं कभी भी छोड़ते, इसमें बहुत डिफरेंस रहता है। जैसे देखो संविधान लिखा हुआ या लॉ बुक्स हैं, कानून की किताबें हैं, वो जो लिखा हुआ है और हमारी जो सोच है वो अलग रहती है। बाबा के जो महावाक्य हैं या बाबा ने जो हमें लॉ बुक्स, या हम लॉ मेकर्स हैं सभी, है ना, हम भविष्य के लिए संगम पर बाबा ने ऐसी श्रीमत दी है, ऐसे लॉस दिए जिन पर चल करके हम श्रेष्ठ बनते हैं, तो हम लॉ मेकर्स हैं। इस समय हम उस लॉ का अभ्यास करते हैं, उसके स्वरूप में आते हैं और फिर दूसरे एक दूसरे आत्माओं को भी प्रेरणा देते हैं, तो लॉ मेकर इस तरह से होते हैं। तो मैंने देखा है कि हम पुराने संस्कारों को साथ ले लेकर के चलते हैं तो वहां समस्याएं खड़ी होती हैं। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं, गीत भी है, बचपन के दिन बुला न देना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, बहुत अच्छा बाबा का गीत है ये। और सचमुच बचपन में भी, लौकिक में भी देखो, बच्चा होता है उसको माँ बाप का और भी परिवार के सभी बड़ों का, संबंधियों का उसको बहुत प्यार मिलता है और बहुत वो खुश रहता है, उसकी बहुत पालना अच्छी होती है। हम भी जब बाबा के बनते हैं वो जो बचपन के दिन है बहुत श्रेष्ठ, वो कभी नहीं भूलने चाहिए, वो हमारी बेसिक्स हैं। उस समय जो बाबा ने, जैसे मैंने बताया कि हम साप्ताहिक कोर्स करते हैं या 3-4 दिन आकर के सेंटर पर हम समझते हैं, बाबा के सबसे पहले ध्यानी दादी थे जो अंबाला में रहते थे, तो मैं 67 में उनके पास गया था, तो उस समय कोर्स आदि नहीं होता था, तो उस समय उन्होंने जो मेन चित्र है जैसे शिव बाबा का है, कैलेंडर लगे हुए थे उस तरह से, मुझे अच्छी तरह याद है, और तीनों लोकों का चित्र था, सृष्टि चक्कर था, त्रिमूर्ति का चक्कर था, सीढ़ी था, ये मेन चित्र जो समझाए। और वो चित्र जैसे भी अपने बहुत मीठा बोलते थे, बहुत धीरे धीरे बोलते थे, और ज्यादा आजकल जैसे हम लोग पढ़े लिखे हैं तो बहुत शब्दावली में भी विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, समय अनुसार ये सब चीजें चलती हैं। तो मुझे याद है कि उस समय दादी ने जो चित्र के बारे में बहुत सहज रूप से मुझे जो बताया वो जैसे छपता गया, वो एक्सेप्ट होता गया और मुझे अपील किया वो बात को, मैं उसको एक्सेप्ट करता कि ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। उस समय मैं 17 साल का था। तो 5-6 दिन के बाद मैं वापस अपने गांव जलंधर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूं, मैं घर में आया तो रात को मैं बैठता था योग में कहेंगे या चिंतन में बैठता था, तो ये चित्र जो थे ना वो मेरे सामने रहते थे, एक एक चित्र, और मुझे बहुत अच्छा लगता, जैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये जो चित्र है सिर्फ चित्र नहीं है, बहुत विचित्रता है इसमें, चित्रों में, इसमें ही श्रीमत है बाबा की, बेसिक्स हैं इसमें। और जब तक हम इन बेसिक्स को अपने दिल और दिमाग में नहीं बिठाएंगे ना, कुछ और चीजों को निकालेंगे नहीं, तब तक ये बैठेंगे भी नहीं। मेरा अपना अनुभव है, दादी के क्लास का मैंने जिक्र किया था उस समय, तो दादी ने कहा कि सुबह उठ करके शक्ति लेनी है बीज रूप अवस्था में बैठ करके। आप सूक्ष्मपुरी में आते हैं तो आप फिश्ता रूप में आते हैं, परंतु आपको संकल्प नहीं करना कोई भी, अगर आए संकल्प ही उस संकल्प को कट करने के लिए और अच्छी अच्छी बातें सोचनी है कि नहीं। क्यों बीज रूप में? क्योंकि बाप बीज रूप है, उसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है। कल वृक्ष में शिव बाबा सारा ज्ञान सृष्टि चक्कर का जब पूरा ज्ञान वो कल वृक्ष बीज रूप है शिव बाबा, वो बीज रूप ज्ञान में ज्ञान उनके अंदर भरा हुआ है, पूरा फुल है, परंतु फिर भी बीज रूप है। ये बेसिक्स है। तो जैसे बाबा है उनके अंदर ज्ञान भी है, इसी तरह अब अमृत वेले जब हम बैठते हैं तो बीज रूप अवस्था में बैठे, उस समय ज्ञान हमारा मर्ज रूप में होना चाहिए, इमर्ज होना चाहिए बीज रूप और मर्ज होना चाहिए हमारा जो ज्ञान है, असली ज्ञान है, दूसरी बातें नहीं। यहां भी हम थोड़ा हम सफर करते हैं, हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारा जो योग है वो पूरा गहन तपस्या जिसको कहते हैं वो हो नहीं पाती, उसका अनुभव नहीं हो पाता। उसका कारण है बाबा के ज्ञान के अलावा हमारे मन के अंदर बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी बातें, तरह तरह की अच्छी अच्छी बातें भी दुनिया में बहुत अच्छी बात है, परंतु ये समझना होगा हमें कि शिव बाबा जब आते हैं उनका ज्ञान बिल्कुल अलग और विचित्र होता है। बहुत आप देखते हैं हम उनको मिलाने की कोशिश करते दुनिया की बातों में, यहाँ भी हम सफर करते, मेरा ये अपना अनुभव है। आप हम बीज रूप की अवस्था में क्यों नहीं टिक पाते? कारण उसका यही है कि जब हमारे अंदर जो ज्ञान है इमर्ज, अभी इमर्ज है, पर जब इमर्ज होता है तो बहुत सारी बातें हम दूसरी आत्माओं को कन्विंस करने के लिए तरह तरह की बातें सेवार्थी करते हैं, वो अच्छी बात है परंतु इतनी अच्छी बात नहीं। मेरा कहने का मतलब सिर्फ बेसिक्स जो परमात्मा ने, बाबा ने, शिव बाबा ने आकर के हम बच्चों को, हम आत्माओं को दिए हैं, उन बेसिक्स से कभी दूर नहीं जाना चाहिए हमें, तो 100% सफलता है। तो मैंने जैसे सुना रहा था कि दादियों ने हमें सुनाया वो पिक्चर्स वगैरह, तो रात को बैठ करके वही चीज़ें मेरे दिमाग में बैठ गई और मुझे अपील की हैं, एक्सेप्ट किया मैंने। यहाँ एक और बात आती, क्या हम दुनिया की बातों को भी एक्सेप्ट करते हैं? कर लेते हैं अच्छी अच्छी बातों को भी, परंतु संपूर्ण समर्पण किसको कहा जाता है? संकल्प से भी वो ये है कि जो बाबा ने संगम युग पर आकर के जो विद्या हमें, जो पढ़ाई पढ़ाई है, हमें उस स्ट्रिक्टली वहां तक रहना है, सीमित रहना है। हमारा टाइम बचेगा, हमारा व्यर्थ जो बातें हमारे अंदर, जैसे बाबा कहते हैं ये व्यर्थ है, चीजें व्यर्थ है, अच्छी बातें भी व्यर्थ होती हैं, वो कौन सी व्यर्थ है? यही बातें हैं कि मैं जब 5000 वर्ष के बाद आता हूं तो उस समय भी बच्चे व्यर्थ चिंतन में बहुत रहते हैं, गंदे चिंतन में। बाबा उसका सर्टिफिकेट हमें दे चुके हैं कि बच्चे अभी कोई दूसरा चिंतन, खराब चिंतन नहीं करते परंतु व्यर्थ चिंतन बहुत करते हैं। तो मैंने ये देखा, मेरा अनुभव है कि जब हम, पहला तो जो बात है कि जैसे बीज रूप बाबा है, अमृत वेले हमारा दिन शुरू होता है, उस समय बीज रूप स्थिति में स्थित होकर के हम बाबा को याद करें। इसको और पक्का करने के लिए क्या करें? उस समय साथी तो हमारे साथ होता बाबा, तो साक्षी होकर के देखें हम, जैसे कोई दो व्यक्ति किसी कमरे में बैठे हैं और तीसरा व्यक्ति बाहर खिड़की से देख रहा है, तो क्या हम साक्षी होकर के हम ऐसा अपने को देख सकते हैं कि शिव बाबा जो ज्योति स्वरूप है, महाज्योति है, उसके सामने मैं आत्मा बिंदु रूप में, बीज रूप स्थिति में स्थित हूं और मैं उसको निहार रहा हूं दूर से? ये साक्षीपन की स्थिति है। अपने श्रेष्ठ अवस्था कैसे बनानी है उसको साक्षी होकर देखना है, उसको चेक करना है जैसे, तो आप देखेंगे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ये जो बाबा ने शेड्यूल दिया पूरे 24 आवर्स का हमें, ये एक घंटे के बाद हमारे गीत बजते हैं, हमारा मुरली क्लास होता है, मुरली क्लास से पहले भी योग होता है, शाम का नूमा शाम योग होता है, फिर उसके बाद नवरात्रि क्लास होता है, क्या हम इन बेसिक्स को एडहेयर टू करते हैं, इस पर चलते हैं? हम बस इतने तक सीमित रहे। तो मैंने देखा है कि बहुत सारी बातें, जैसे हमारी सेवा बहुत विस्तार को पाती जा रही है और अभी तो अंतिम समय है, तो अभी अगर इन बातों को अगर यू टर्न नहीं हमने मारा, मतलब बिल्कुल एकदम जो बाबा ने सिखाया, बिल्कुल लफ्ज ब लफ्ज, शब्द ब शब्द, आप साप्ताहिक कोर्स पढ़िए और बाकी किताबें पढ़िए, बहुत अंतर मिलेगा आपको। जैसे मैंने तीनों लोकों की बात की है, तो क्या हम योग में जब बैठते हैं, हम बहुत सारा चिंतन अपना, बहुत अनुभव साथ साथ में, हम संकल्प करते हैं, उसके पीछे एक भाव होता है, उसका भी भाव होता है, ये संकल्प क्यों उठा, आप करके देखिए अपनी इच्छा। अभी जैसे हम संकल्प करते हैं कि हम बाबा को याद करेंगे, बाबा से शक्ति लेंगे, फिर हम सकाश देंगे, इनको सकाश देंगे, उनको सकाश देंगे, भाव है इसके पीछे, और वो भी एक विस्तार। कभी जैसे बाबा कहते हैं माया बहुत मोहिनी है, मैं इन बातों में हमेशा लेता हूं कि आपका योग कहाँ टूटता है, आपको अच्छी अच्छी बातों में बहला करके, जैसे मैं उस आत्मा को योग सकाश दूंगा, उस आत्मा को सक, बाबा कभी नहीं कहते, बाबा कहते सिर्फ मेरी याद, मेरे को याद करो बस, सकाश अपने आप। लाइट हाउस होता है ना, इसकी भी बहुत अच्छी मुरली चली हुई है, लाइट हाउस चारों तरफ घूमता है और जिसको वो लाइट में देखना होता वो देख लेता है, जिसको वो लाइट माइट चाहिए, आपसे सकाश चाहिए, आप वो याद आएगी, आपसे लाइट माइट मिलती रहेगी, ये एक नेचुरल है, वो तो ऑटोमेटिक ये प्रोसीजर है, प्रोसेस है, चलता रहता है। तो मैंने ये देखा है कि अमृत वेले से लेकर के वो, अगर अमृत वेला हमारा एक्यूरेट बाबा के कहने के अनुसार बेसिक्स, अभी देखो कोई भी खेल खेलते हैं, आप उस बेसिक्स पर जाते हैं तो खेल में बहुत अच्छा, हम जैसे क्रिकेट की बात करते हैं, फुटबॉल की या दूसरी चीजों की, ऐसे वैसे कई बहुत खेलते हैं वो फेल हो जाते हैं, पर बेसिक्स को अडेयर टू करते हैं, उसी तक सीमित रहते हैं, उनका खेल बहुत ही उच्च श्रेणी का होता है, सफलता को पाते हैं। ठीक इसी तरह हमारी स्टडी भी बहुत ही इन चित्रों के बीच में सीमित रहनी चाहिए, इससे बाहर नहीं, खासकर जब हम योग में बैठते हैं। सेवा के लिए हम बहुत सारे चिंतन करते हैं, अपने दूसरे भाई बहनों को समझाने का प्रयास करते हैं, नई नई बातें आती हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु योग के लिए बहुत एक सीमित जैसे प्रोसीजर है कि हम आत्मा बीज रूप में बैठ करके उस समय हम जो ज्ञान है हमारे अंदर वो मर्ज हो जाना चाहिए, परंतु उसका नशा होना चाहिए। अगर नशा नहीं है तो आपका निशाना भी ठीक नहीं लगेगा और आपकी विजय भी निश्चित नहीं होगी। ये भी एक बाबा की अव्यक्त मुरली बहुत अच्छी चली हुई है, बच्चों का नशा श्रेष्ठ है तो निशाना भी ठीक लगेगा और सफलता भी निश्चित ही होगी, पक्का है बिल्कुल। आप देखेंगे बहुत, जब हमारी बहुत अच्छी अवस्था होगी होती है तो हमें कितनी खुशी रहती है। मुझे याद है कि शुरू में हमारे सबसे पहले जो चीफ मुख्य प्रशासक थे कौन थे, मम्मा सरस्वती थे, माँ मम्मा थी, जगदम्बा माँ थी, और मधुबन में रह करके सभी दादियां बाहर सेंटरों पर होती थी, बहुत थोड़े सेंटर्स होते थे भारतवर्ष में, तो वो पत्र लिखते थे मम्मा उनको यहां से। उन पत्रों को मैंने पढ़ा कहीं, क्योंकि मम्मा गुरमुखी लिखती थी, सिंधी में नहीं लिखते थे पत्र, और सभी मोस्टली दादियां हमारी सिंधी थी, वो जानती थी गुरमुखी या किसी से पढ़ा लेती थी। तो उन पत्रों को मैंने देखा, कारोबार की बातें भी होती थी, परंतु साथ में ये बहुत, एक बात बहुत मैंने देखी है, बार बार मम्मा हर पत्र में लिखते थे कि आप अति इंद्रिय सुख की अनुभूति तो करते होंगे ना, हर पत्र में। तो मैं सोचता था कि मम्मा ऐसा लिखती है तो जो भी दादियां पढ़ती उनके ऊपर एक प्रेशर रहता होगा। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, बाबा की बातों का हमारे ऊपर प्रेशर रहना चाहिए, दुनिया की बातों का प्रेशर नहीं रहना चाहिए। हमें दुनिया की बातों का प्रेशर रहता है, ये काम करना, वो करना, उसको ये जवाब देना, वो जवाब देना। बाबा की बातों का प्रेशर रहना चाहिए, तो जाकर के ये बातें आपके दिल और दिमाग में अंदर रसेंगी, बसेंगी वो। और तब हम उस स्थिति में जब हम इससे नशा पैदा होता है, तो मम्मा हर पत्र में, हर दादी को जिसको भी पत्र लिखती थी, तो ये प्रश्न जरूर होता था, आप अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति तो करते होंगे ना? ना, मतलब मम्मा पत्र में लिखती थी, फिर दादी जरूर जवाब देती होंगी उन मम्मा को कि जरूर हम करते हैं। इसका प्रेशर होना चाहिए। और अति इंद्रिय सुख सिर्फ ये संगम युग पर ही हम इसका अनुभव करते हैं, ना हम कलयुग में कर सकते हैं, ना हम सत्युग में कर सकते हैं, ना त्रेता में, ना द्वापर कलयुग में, नहीं, कभी नहीं। चाहे कुछ भी, कितनी भी अच्छी अवस्था हो, कितने हम रिच हो, कितना भी हमारे ताज तख्त हो, कुछ भी हो, परंतु ये जो बाबा की गोद में बैठ करके अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, और एक्यूरेटली अगर पढ़ते हैं, फॉलो करते, जिसको बाबा कहते हैं श्रीमत, उसको फॉलो करते, जैसे मैंने बताया बेसिक्स के ऊपर चलते हैं, तो हमें सचमुच अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप, हम स्वीट साइलेंस वर्ल्ड में, मैंने ये देखा, जैसे मैंने बताया शुरू शुरू में, बचपन के दिन की बात है वो, तो जैसे शुरू में आप देखेंगे हम ज्ञान में, योग में, ज्ञान में योग करना शुरू करते हैं, तो दुनिया की बातें तकरीबन भूल जाती हैं एकदम, क्योंकि नई चीज हमें मिलती है, और उस नई चीज में जैसी बहुत अट्रैक्शन होती है, बहुत अच्छा लगता है। तो मेरा भी जैसे उस समय अनुभव रहता था कि घंटों घंटों में बैठा रहता था। आप भी सोचिए साक्षी होकर के, कि अगर जैसे परम धाम है, आधा तीनों लोकों में आधा सृष्टि चक्र उससे सूक्ष्म पुरियां, वो तो जैसे कर्म क्षेत्र तक या पांच तत्वों के अंदर अंदर, और उसके ऊपर छठा तत्व है जिसको हम क्रिम्सन कलर बोलते हैं, ब्रह्म तत्व बोलते हैं, सुनहरा लाल रंग का, ये भूलना नहीं चाहिए कभी भी हमें। सूर्य अस्त होता है, सूर्य उदय होता है, उस समय वो लाली हमें दिखाई देती है, हमें याद पड़ती है। जैसे बाबा जिसको अपने धाम को याद रखना, हम घर को याद भी करते हैं, हमें सुरक्षा फील होती है ना, हमारा घर है, हम जैसे नींद भी अपने घर में ही अच्छी आती है ना? जो सुख छज्जू दचवारे किते बल्क न बुखारे, हम ऐसा बोलते हैं, कहीं भी चले जाओ आप, वापस अपने घर में आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और ये घर तो सब आत्माओं का घर है, परमानेंट घर है ये, और इसकी स्मृति मैं समझता हूं कि इतनी होनी चाहिए। जैसे कोई बात सिर चढ़ के बोलती है ना, तो हमारी आंखों से दिखाई देनी चाहिए। हमने शुरू शुरू में दादियों को देखा, जैसे मनमोहिनी दीदी है, बड़े दादी थे, और भी दादियां, जानकी दादी, गुलजार दादी, आप सभी अनुभवी होंगी, इनकी आंखें बोलती थी, तो हम सोचते थे इनकी आंखें क्यों ऐसा अनुभव होता है, परम धाम की याद आती है। शिव बाबा की याद तो है ही है, परम धाम की याद, क्योंकि शिव बाबा तो कहता मैं तो पारे मिसल, मेरी याद फिसल जाती है ना, याद करना पुरुषार्थ रहता हमारा, हम मनुष्य हैं, जन्म मरण के चक्कर में आने वाली आत्मा, ये स्वाभाविक है। परंतु एक घर का जो परिचय हमें मिलता है, अपने धाम का, स्वीट साइलेंस होमवर्ड का परिचय मिलता है, उसको हमें जैसे एक बहुत नेचुरल वे में ही याद रखना चाहिए। तो शुरू शुरू की बातें हैं, मैं बताऊं कि सेंटर 40 किलोमीटर दूर था, मैं गांव में रहता था, तो बचपन में जैसे माँ चली गई, घर का खाना भी बनाता था, पढ़ता भी था, और चोरी फिर बस पकड़ करके मैं डेली जलंधर मुरली सुनने जाता था, सिर्फ इतनी अट्रैक्शन होती थी उस समय, मुरली सुनने जाना, मुझे मुरली सुनने जाना, और 40 मिनट का वो जो रास्ता है बस का, आप सभी को अनुभव होगा, मधुमन में आते हैं, कितनी उत्कंठा से, कितने उमंग उल्लास से आप लोग आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि रास्ते में जो साइट सीइंग होगा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता होगा, आपकी बुद्धि मधुबन में ही रहती होगी, हमारी उस समय थी, हम जाएंगे मधुबन, मधुबन घर में वहां की, तो उस समय हमें ये फील होता था कि यहाँ की दीवारों से भी जैसे याद आती थी भगवान की, शिव बाबा की घर की याद आती थी। जो मधुबन से जाता था, पार्टियां जाती थी, छोटी ट्रेन होती थी तो मीटर गेज ट्रेन होती थी, उस समय चलती थी, 24 घंटे लगते थे इधर आने को, तो हम वहां जाते थे, वहां भी इतना एक दूसरे को देखते थे ना, जैसे बिल्कुल आत्मिक स्थिति रहती थी। उनको भी से परवाह आता था, हमें भी परवाह आता था, यहां की बात तो अलग है। इतना ज्यादा मधुबन का एक, हम कहें कि मधुबन जो इतनी श्रेष्ठ तपोभूमि है, अभी भी हम जैसे हम अगर आते हैं तो हम जैसे बाबा ने की बेसिक्स क्या है कि हम सब आत्मा हैं। इस तपोभूमि पर बैठ करके जितना आप पुरुषार्थ करेंगे, एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, अपना ड्रामा ऐसा नूंद नूंदेंगे, देखो ड्रामा को भी यूज करना आना चाहिए। हम ड्रामा को बहुत गलत तरीके से, मैं ऐसा समझता हूं, मतलब एक अभ्यास सा ही हो गया है, कोई भी चीज हमारे से गलत हो जाती है हम उसको कहते हैं ड्रामा। अच्छी चीज हो जाती है शायद हल्के रीति से भले बोलते होंगे, तो क्या ये ड्रामा चेंज हो सकता है हमारा? मेरा अनुभव कहता हाँ बिल्कुल हो सकता है। हम अगर बाबा के कमरे में बैठते हैं, मेरा अभ्यास है ऐसा कि मैं बाबा कमरे जाता हूं तो पहले सोचता हूं कि मैं 15 मिनट बैठूंगा बाबा के कमरे में, उसको पहले फोर्स ही करके बिल्कुल बाबा के सामने फरिश्ता रूप में या बिंदु रूप में मैं बैठूंगा, माया का एक संकल्प भी मुझे नहीं आ सकता, ये मेरा ड्रामा है अगले 15 मिनट के लिए, आप फिक्स कर दीजिए। इसलिए आपने कई क्लासेस भी सुनी होंगी शिवानी दीदी की, दूसरी, संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सृष्टि होती है, वो गलत नहीं है। आप देखिए, अगर आपने निश्चय कर लिया अंदर दृढ़ता से कि मैं अभी बाबा के कमरे में बैठता हूं, बाबा के सामने बैठूंगा मैं, बिल्कुल जैसे बाबा ने कहा मुझे उसी बेसिक्स को देखते हुए सामने बैठूंगा, मेरा एक भी संकल्प इधर उधर नहीं जाएगा। एक एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, आपको कभी प्राइम मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट मिल जाए, आप उसके सामने बैठे हो ना, तो क्या आप उठ करके वापस उठ के आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे, चले जाएंगे? ये हमारी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है हमारी। हम बाबा को जैसे, बाबा तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, उसके सामने कुछ भी नहीं है। अगर हमारे संकल्प के अंदर, हमारे दिल दिमाग के अंदर बाबा कौन है, कितनी बड़ी अथॉरिटी है, उसके सामने मैं बैठा हूं और मैंने टाइम फिक्स किया है मुझे 15 मिनट, एक घंटा, आधा घंटा, ये मैं इसलिए फिक्स कर रहा हूं कि इससे बहुत फायदा होता है, नहीं तो भारी लगेगा आपको। आप देखेंगे वो जो आधा घंटा अनुभव होगा आपका, कितने समय तक चलता है वो अनुभव, सोते जागते बातचीत करते हुए भी आपकी आंखों में वो नशा रहेगा याद का। ये बचपन के दिनों में हमें फील होता था, यहां हम योग तपस्या करते थे, बहुत ही अच्छा लगता था, बाबा की बहुत ही अच्छी, बाबा की मुरली इसी मेडिटेशन हॉल में भी हमने सुनी है, हिस्ट्री हॉल में भी सुनी, बाबा के कमरे में भी मिले, तो मैंने देखा है कि वो जो अनुभव है ना अभी तक नहीं भूलते हैं, परंतु उसके बाद हम कितनी बार बाबा को मिले हैं, काफी बार मिले हैं, परंतु वो भूले हैं, भूल जाते हैं। तो ये जो उत्कंठा है, मैंने देखा है कि प्रायोरिटी हमारी लाइफ में क्या है वो फिक्स करनी होती है। हमारी हॉबी क्या है, हमारी तरह तरह की हॉबी है, स्थूल लौकिक रीति से, कला की, संगीत की, ये बहुत अच्छी हैं, परंतु इस संगम युग पर ये ठीक नहीं है। सिर्फ याद की हॉबी होनी चाहिए। अगर आप हॉबी किसको कहते हैं, जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपको आनंद पैदा होता है, आनंद मिलता है, वो अति इंद्रिय सुख की बात मैंने जैसे शुरू की थी मम्मा की, तो सचमुच अगर आपकी हॉबी ये है तो आपको अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति जरूर होगी, उसका अनुभव आपके पास जरूर होगा। उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको पास शब्द नहीं मिलेंगे कि किस तरह से किसी को, आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, आपको कोई इधर उधर जाने की प्यास, कुछ संकल्प नहीं आएगा, मैं उधर जाऊं, वो काम करना नहीं, कहना यहां बैठे हो मजा आ रहा है बहुत ही बच्चे। वो है बेसिक्स के ऊपर कि आप जब परम धाम में जाते हैं आप बिंदु रूप स्थिति में बैठते हैं और उससे पहले आप ड्रामा का संकल्प करिए कि मैंने अपने अगला जो समय है, अगली जो रात है, अगला जो दिन है, मुझे ये करना, जैसे बाबा कहते डायरी रखो, अपना चार्ट बनाओ, मुझे दिन में क्या करना है। आप सभी बच्चे वीआईपी बच्चे हैं तो वीआईपीज हमेशा प्लानिंग करते हैं, उनके सेक्रेटरीज, उनके ऑफिस वाले, इतने समय में ये मीटिंग है, ये मीटिंग है, ये मीटिंग है, ये मीटिंग है। तो अभी तो अंतिम समय है, तो मैं समझता हूँ कि इतना कुछ भी, बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें प्रोग्रेस प्रोग्रेस कह सकते हैं हम, उसी बहाने ना हम अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। परंतु अभी जैसे अंतिम समय है, अंतिम समय में मैं समझता हूँ कि यू टर्न मारना चाहिए, बिल्कुल जो स्थूल में भी वाइंड अप करना चाहिए हमें, अपने जो भी कार्यक्रम है व्यवहार में आते हैं, और बेसिक्स पर आना चाहिए। साप्ताहिक कोर्स आप पढ़िए, आप देखेंगे कि आपकी बहुत सारी बातें आपको भिन्न लगेंगी। हाँ, हम तो बेसिक्स को भूल ही चुके थे बिल्कुल भी। बिल्कुल स्ट्रिक्टली अगर आप फॉलो करते हैं तो अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होगी और वो ही हमारा संगम युग का लक्ष्य है। और दूसरी बात मैंने देखी है कि डर नहीं लगता, डर, चिंता, भय, ये खत्म हो जाना चाहिए बाबा के बच्चों का। मैं आपको सुनाता हूँ कि जैसे लौकिक रीति में भी, जैसे मेरी, मैंने स्टेट असेंबलीज होती हैं विधानसभा, पार्लियामेंट सेंटर में, तो मैंने विधानसभा में सर्विस की है 21 इयर्स चंडीगढ़ में, तो एज PA2 स्पीकर रहा। तो मेरा उस समय सम्मान कह लीजिए, अभिमान कह लीजिए, कि मैं PA2 गॉड हूँ, मैं PA2 स्पीकर नहीं हूँ। हम सभी बाबा के बच्चे PA2 गॉड हैं, खुदाई खिदमतगार हैं, सभी अपने आप को देखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाबा कर्ण करावनहार हैं, वो अपना कर्तव्य, हम उसके मददगार हैं, खुदाई खिदमतगार हैं, है ना। हम अपना भाग्य भी बनाते हैं, दूसरों का भी बनाते हैं। तो ये सम्मान अंदर से रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए बाबा का बनने के लिए, बाबा से दूर करने के लिए नहीं। जैसे बाबा कहते कि हम अपनी अच्छी अच्छी बातों से दूसरों को प्रभावित कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उसमें नहीं जाना चाहिए इतना। कहने का मतलब ये है कि जो बाबा की जो बेसिक चीजें हैं उसको अभी पकड़ना चाहिए हमें। तो डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे अंदर सर्वशक्तियां अपने आप, जब हम बाबा के श्रीमत अनुसार योग करते हैं, प्रॉपर दिनचर्या जो हमारी, हम उसको फॉलो करते हैं, डर निकल जाता है, भय निकल जाता है, चिंता निकल जाती है। इन तीनों चीजों का ही हमारे अंदर बहुत, हम तरह तरह की माया आती है, इसको सम आप इसी तरह ही कह सकते हैं कि डर लगता है हमें। तो मैंने ये देखा है कि जैसे उस समय हम विधानसभा में थे तो टेररिज्म था पंजाब में, 70s-80s की बात है, तो हम टूर पर जाते थे तो सचमुच डर नहीं लगता था। तो उस समय हमें समय मिलता था उनके साथ बैठ करके, बाबा की याद में बैठ करके अपना टाइम पास करने, क्योंकि लंबा टूर भी होता था, छोटा भी होता, जैसा भी होता था। मैं डर की बात इसलिए सुना रहा हूँ, तो उस समय आतंकवाद था तो काफ़ी बार अटैक होते थे उन पर, तो हम साथ होते थे। तो आपको सच सुनाए, हम जितने भी बीक के भाई बहने हैं, हम अपनी सुरक्षा नहीं करते बाबा की याद में रह करके, आसपास का एरिया जो हमारे अंदर से जो ऐसी ऊर्जा निकलती है, ऐसा वाइब्रेशन निकलता है, आसपास का एरिया भी सुरक्षित रहता है। एक बार की बात है, मैं सुनाता हूँ कि जैसे हम चंडीगढ़ से कहीं जा रहे थे बाहर पंजाब की तरफ ही उधर, तो आगे पायलट होती है, उसके पीछे उसकी गाड़ी थी, उसके पीछे सिक्योरिटी गाड़ी थी और पीछे दूसरी सिक्योरिटी गाड़ी होती थी। तो हम उस समय जैसे उनके साथ ही बैठे थे तो पीछे से एक फीएट आती है, ये आतंकवाद जब बहुत था पंजाब, उस समय की बात सुनाता हूँ प्रैक्टिकल। तो उनके अंदर पुलिस वाले बैठे थे यूनिफॉर्म लेकर के, वीपन लेकर के, तो उन्होंने वीपन बाहर भी दिखाए हुए थे, तुम्हारी सिक्योरिटी वालों ने उनको मना किया कि आप पीछे हट जाओ, मतलब कोई भी वीआईपी को क्रॉस नहीं कर सकता, ये एक नियम कह लीजिए, प्रोटोकॉल कह लीजिए। परंतु फिर भी हमारे साथ साथ चलने लगे, तो हम इधर बैठे थे, स्पीकर इधर बैठा था, तो वो फायर नहीं कर सके, साथ साथ चलते गए वो। कोई रिश्तेदार तो हमारे थे नहीं, ना हमें जानते थे, चला सकते थे। तो हमें थोड़ा लगा कि ये तो ठीक नहीं है, पुलिस वाले साथ में है ऐसा। पुलिस वाला कोई भी गवर्नमेंट सर्विस को कभी नहीं ऐसा कर सकता, तो वो आतंकवादी थे। तो एक दो मिनट ऐसे साथ चले, फिर निकल गए स्पीडली, आगे क्रॉस कर गए। दो मिनट के बाद फिर वो पीछे से वही गाड़ी फिर आती है, फिर वो साथ साथ चलते हैं, तो वो फायर नहीं कर सके, कुछ भी नहीं कर सके। तो उस समय हमारे पास जैसे वायरलेस होती थी, तो हमने कंट्रोल रूम से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा अपना रास्ता चेंज कर लीजिए। तो हम बिल्कुल निश्चिंत होकर अपनी मस्त बाबा की याद में बैठे, हमें अच्छी तरह याद है। तो रास्ता चेंज किया उसके बाद, तो जैसे वो बच गए जैसे, तो उसके बाद जैसे है, तो बाबा की कमाल, बाबा की याद की कमाल, हम सिर्फ उस समय निम्मत जरूर बने। तो सभी वो कहने लगे, अंकल आप साथ थे ना, इसलिए हमारे डैडी बच गए, हमारे दोस्त बच गए, कंस्टिट्यूंसी के लोग भी। इस तरह से कई ऐसे अनुभव हैं, हम बी के भाई बहने अगर शिव बाबा की याद में कहीं भी बैठे हैं, तो सचमुच मेरे और भी कई ऐसे अनुभव है कि हम सुरक्षित खुद भी रहेंगे, दूसरों को भी सुरक्षा देंगे। तो ये चीज, इन ऐसे ऐसी चीजों का अनुभव हमारे पास अनुभव होना चाहिए। फिर मैंने ये देखा कि बाबा की ये जो याद है, ये बहुत वंडरफुल याद है। इसमें मेन चीज क्या, किस चीज का रोल है, हमारी एकाग्रता का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। हम मुरली सुनते हैं, उस समय भी अगर हमारी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, हमें मुरली समझ में नहीं आएगी। उसका आधार है हमारी याद का। अगर हमारी याद एक्यूरेट है, जैसे मैंने कहा हमारे बेसिक्स के ऊपर हम याद उसको सामने रख के याद करते हैं, जैसे बाबा ने कहा वैसे याद करते हैं, तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। और उसका हमारे शरीर के ऊपर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कई बार हम बीमारियां आदि आती है, स्पॉन्डेलाइटिस हो जाता है, चक्कर आते हैं, या और भी कई बीमारियां आती हैं। इसी तरह एक बार मैं मधुबन में ही था, तो ऐसे चक्कर वगैरह आना शुरू हुआ और शरीर में इम्बैलेंस हो गया, तो चलना फिरना भी, तो मुझे न्यूरो फिजिशियन के पास अहमदाबाद लेके गए, डॉक्टर सुधीर शाह, बहुत फेमस, हमारी दादियों को भी देखने आते थे। तो उन्होंने कहा कि जब भी आप को चक्कर आए, आप वहीं बैठे हैं या लेटे हैं, एक निशान लगा लीजिए ऊपर सामने। मुझे ये सुनकर के इतना अच्छा लगा कि निशान तो हमारे मानस पटल पर पहले ही शिव बाबा का लगा हुआ है ना, सबके पास अंदर, आत्मा का भी है, परमात्मा का भी है, हम डिनाई नहीं कर सकते। तो जब भी ऐसा चक्कर आए, तो आप एकाग्रता से बाबा को याद, उसको देखना शुरू करो, उसके शब्दों में मतलब उस समय बाबा को याद करना शुरू कर दो, या अपने स्वरूप को याद करना, आपका चक्कर खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब ये चक्कर जो ये मेरे शरीर का इम्बैलेंस कब तक खत्म हो जाएगा, तो कहते 2-3 मास लग सकते हैं। तो मेरा अनुभव ये है प्रैक्टिकल कि 1 मास में वो चक्कर खत्म हो गया था, इम्बैलेंस पूरा हो गया था। कारण उसका वो कि हम बचपन से इस चीज का अभ्यास ही, अंदर हमारी एकाग्रता ये डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। हम आत्मा जो हैं जैसे हैं, शिव बाबा जो है जैसा है, उसी बेसिक्स के अनुसार अगर हम बाबा को याद करते हैं, तो हमारी कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है, और उसी तरह ही हमारे फिर हॉर्मोन्स सीक्रेट्स होते हैं। हम कुछ भी खाते पीते हैं, तभी बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में अगर रह करके आप खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, कर्म करते हैं, तो वो उसमें आपको सफलता मिलती जाएगी। आपको कैसा भी खाना हो, बाबा की याद में खाया हुआ खाना फिर माया डिस्टर्ब नहीं करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी। तो ये कॉन्सेंट्रेशन की बात मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बेसिक्स है हमारे, कि जो बाबा जैसा है वैसा समझ करके हम याद करते हैं, तो हम सफलता की ओर अग्रसर होते रहते हैं। ओम शांति।